Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Dhyaye Nityam Mahesham Rajata Girinibham Charu Chandra Batansam Ratna Kalpojvalangam Parasum Rigavara Veti Hastam Prashannam Padmasinam Samantat Stutam Amaraganir Vyagrakritim Vasanam Visvadhyam Visvavandhyam Nikhila Bhayaharam Panchavaktram Trinetram Narayanam Padma Bhavam Vasishtam Saktim Chatat Putra Parasarancha Vyasam Sukam Gauda Padam Mahantam Govinda Yogindra Mathasya Sishyam Sri Sankaracharya Mathasya Padma Padancha Hastamalakancha Sishyam Tantutakam Vartikakara Manyan Asmat Gurum Santatamanatosmi Visuddha Jnana Dehaya Trivedi Divya Chakshuse Sriyah Prapti Nimittaya Namah Somardha Dharine Om Shantihi 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 Shivaya Namah Om Shivaya Namah Om Shivaya Namah Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om Shivaya Namah Om Shivaya Namah Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om Shivaya Namah Om Shivaya Namah Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om Shivaya Namah Om Namah Shivaya Haraya Namah Om Haraya Namah Om Haraya Namah Om Namo Haraya Haraya Namah Om Haraya Namah Om Namo Haraya Haraya Namah Om Haraya Namah Om Haraya Namah Om Namo Haraya Haraya Namah Om Haraya Namah Om Namo Haraya Bhavaya Namah Om Bhavaya Namah Om Bhavaya Namah Om Namo Bhavaya Bhavaya Namah Om Bhavaya Namah Om Namo Bhavaya Bhavaya Namah Om Bhavaya Namah Om Bhavaya Namah Om Namo Bhavaya Bhavaya Namah Om Bhavaya Namah Om Namo Bhavaya Mridaya Namah मृडाय नम ओम नमो मृडाय मृडाय नम ओम
मृडाय नम ओम
मृडाय नम ओम नमो मृडाय मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम नमो मृडाय मृडाय नम ओम
मृडाय नम ओम
मृडाय नम ओम नमो मृडाय शिवाय नम ओम शिवाय नम ओम शिवाय नम ओम नमः शिवाय शिवाय नम ओम
शिवाय नम ओम
शिवाय नम ओम नमः शिवाय भज मन शिव शिव निरन्तरम् जप मन शिव शिव निरन्तरम् भज मन शिव शिव
निरन्तरम्
जप मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव निरन्तरम् स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन
शिव निरन्तरम्
स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव
कृष्ण यजुर्वेदीय मंत्रोपनिषद के अंतर्गत श्वेताश्वतर उपनिषद के चतुर्थ अध्याय में 18वें मंत्र की व्याख्या है। यदा तमस्तन्न दिवा नरात्रिर् न सन्न च सच्चिव एव केवलः तदक्षरम् तत्सवितुर्वरेण्यम् प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी नैनमूर्धम् न तीर्यम् च न मध्ये परिजग्रभत् दो न है क्या न मध्ये नैनमूर्धम् न तीर्यम् च न मध्ये परिजग्रभत् न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् हृदारिदिस्तम् मनसाय येनम् एवं विदुरम् मृतास्ते भवन्ति अजात इत्येवं कश्चित् भीरुः प्रपद्यते
प्रपद्यते
रुद्रयते दक्षिणं मुखं
रुद्रयते दक्षिणं मुखं
तेन मां पाहि नित्यं
तेन मां पाहि नित्यं
मानस्तो केतनये मान आयुषी
मानस्तो केतनये मान आयुषी
मानो गोकु मानो अश्वे कुरीरिख
मानो गोषु मान अश्वे शुरीरिख
वीरान् मानो रुद्रभामितो
वीरान् मानो रुद्रभामितो
बधिर्हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे
बधिर्हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे
वेद के मंत्र हैं, बड़े भाग्य से श्रवण करने को प्राप्त होता है। वेद के मंत्रों की विशेषता है कि इसका अर्थ चिंतन पूर्वक उच्चारण या श्रवण करो तो बहुत लाभ है, और इनके अर्थ का बोध न हो तो भी इन मंत्रों का श्रवण और उच्चारण बड़ा लाभकारी होता है। श्रवण और उच्चारण का लाभ क्या है महाराज? कहते हैं क्योंकि वेद मंत्र साक्षात परमात्मा के ही स्वरूप हैं, समस्त दुरित अर्थात अज्ञात पूर्वक जितने भी निषिद्ध कर्म किए गए हैं, अज्ञात जनित जो पाप हैं, उसका क्षय हो जाता है। इन मंत्रों की विशेषता है। लोक व्यवहार में भी कहते ही हैं, जानबूझकर श्रद्धा पूर्वक किसी पवित्र तिथियों में गंगा स्नान करो तो उसका अपना फल है ही है। यदि किनारे चलते चलते अनजान में भी फिसल कर गंगा जी में गिर गए तो भी उसका फल सौदाई है। ये जो कहते हैं, ये गंगा जल की विशेषता है। इसी प्रकार से वेद मंत्रों की विशेषता है। जान करके इसका अर्थ चिंतन करते हुए इसका उच्चारण करो या श्रवण करो, इसका तो फल है ही है। अनजान में यानी अर्थबोध के बिना भी इन पवित्र मंत्रों का उच्चारण और श्रवण बड़ा लाभकारी है। मंत्रों शब्द का अर्थ ही यही है। जैसे उदाहरण दिया करते हैं महात्मा लोग, किसी भी रोग संबंधी डॉक्टर के यहां जाओ और डॉक्टर से परामर्श ले लो, तद रोग संबंधी दवाई डॉक्टर लेकर दे देता है, कहता है कि इस औषधि को तुम नियम पूर्वक सेवन करो तो तुम्हारा रोग निवृत्त हो जाएगा। डॉक्टर जो औषधि लिखता है या डॉक्टर जो औषधि खाता है, या स्वयं खावे या दूसरों को खाने के लिए कहे, उस डॉक्टर को पूरा मालूम होता है कि उस औषधि में कौन कौन से तत्वों का सम्मिश्रण किया हुआ है। उसका जो कंपोजिशन है, उसका जो सम्मिश्रण है, योग है, वो कौन कौन से केमिकल मिलाया गया है इस औषधि में, डॉक्टर को पूरा मालूम है। केमिस्ट को मालूम है, डॉक्टर को मालूम है। वह जानते हुए डॉक्टर भी सेवन करेगा या केमिस्ट भी जानते हुए सेवन करेगा, तब तो उन रोग निवृत्ति होगी ही। लेकिन डॉक्टर जो लिख कर देता है, हमको पता नहीं है कि उस टैबलेट में, उस गोली में क्या क्या कंपोजिशन है, कौन कौन सी केमिकल्स मिलाए गए हैं और कौन से केमिकल का कौन से तत्वों के साथ क्या संबंध है, हमको कुछ भी पता नहीं। फिर भी डॉक्टर लिख के देता है उसको हम अनजान में ही केमिकल उस कंपोजिशन की सिस्टम को फॉर्मूले को न जानते हुए भी हम उस औषधि को खाते हैं तो हमारा रोग निवृत्ति तो होता ही है, होता है कि नहीं बोलो। क्या ये जानना जरूरी है आपको जो सिटामोल डॉक्टर दे रहा है बुखार में ये सिटामोल खाओ तो ये जो खाया जा रहा है सिटामोल इसमें क्या क्या केमिकल कौन कौन से केमिकल की कितनी परसेंट में इसका कंपोजिशन है ये जानना जरूरी है क्या? इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, न जाने तो भी आप खा लो तो रोग निवृत्ति होगी क्योंकि उसकी विशेषता है, उस केमिकल की विशेषता है। इसी तरह ये वैदिक मंत्रों की ये विशेषता है, इन मंत्रों के अर्थ चिंतन पूर्वक अर्थ ज्ञान पूर्वक इसका श्रवण और उच्चारण करोगे तो फायदा है ही, अर्थ ज्ञान बिना भी इन मंत्रों का उच्चारण और श्रवण करोगे तो उसका भी अपनी जगह पर फायदा है, लाभ है। इसलिए इनको कहते हैं मंत्र। आपके सामने कई बार थोड़ा सा मंत्र और श्लोक को समझने में कठिनाई आती है। हम लोग कह दिया करते भागवत का श्लोक है, गीता का श्लोक है, लेकिन हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि ये उपनिषद का श्लोक है। ये अंतर है और आपको लगेगा कि ये क्या बात है, उपनिषद के उसको मंत्र कहते हैं, उसी आकार का है, वही छंद का है, वही चार लाइन के हैं, वही छंद हैं, अनुष्टुप छंद गीता में भी है और वही छंद इन उपनिषदों में है और उपनिषद में जो प्रयोग हुए हैं इनको महात्मा लोग बार बार मंत्र कह देते हैं और गीता के को मंत्र न कह के श्लोक कह देते हैं, भागवत को श्लोक कह देते हैं। यही अंतर है क्योंकि उपनिषद ये स्वयं ही परमात्मा के वाणी से अभिव्यक्त हुआ हुआ है, अपौरुषेय है, ये किसी व्यक्ति की रचना नहीं है उपनिषद, इसलिए इन सब को मंत्र कहा जाता है और गीता आदि पुराण आदि जितने भी हैं इन सब को श्लोक कह देते हैं क्योंकि ये वेदव्यास की रचना है, इसलिए उनको स्मृति कहते हैं। वेदव्यास जी की जितनी भी रचनाएं हैं उन सबको स्मृति कहते हैं और जो वेदव्यास की रचना नहीं यानी किसी भी ऋषि की रचना नहीं है वो साक्षात परमात्मा के अभिव्यक्ति है, उसको श्रुति कहते हैं और श्रुति को ही मंत्र कहते हैं। इनको मंत्र कहने में यही अभिप्राय है कि आप इसको श्रवण करके यदि मनन करते हो तो फिर यह आपके त्राण करने में सक्षम है, इसलिए मंत्र। कोई भक्त लोग आते हैं कई बार हमारे पास, ऐसे ऐसे भक्त आते हैं, महाराज कुछ समस्या है उसके लिए कोई मंत्र हो तो बताओ, बोलते हैं आते हैं, संसारी लोग तो उसी हिसाब से ही आते हैं ना, महाराज ये समस्या है इसके लिए कोई मंत्र हो तो बताओ। हमने कहा मंत्र तो बहुत से हैं तो आप बताइए, तो हम कहते तुमने क्या कोई भी मंत्र धारण किया ही नहीं अभी तक? बोले यूं तो बहुत से मंत्र सुने हैं, फलाने गुरु से फलाना मंत्र, फलाने गुरु से फलाना मंत्र, यूं तो बहुत से मंत्र हमने सुना है, ले रखा है, गुरुओं से मंत्र ले रखा है। अब ये समस्या है इसके लिए आपके पास कोई मंत्र हो तो दे दो। देखो भाई मंत्र में किसी समस्या के समाधान करने के लिए कोई स्पेशल मंत्र नहीं है, आप कोई भी मंत्र को जितना जप करोगे, मनन करोगे, जिस उद्देश्य से भी आप उन मंत्रों को जपोगे, वो मंत्र में वो क्षमता है कि आपकी समस्या के समाधान कर देगा। लेकिन शर्त यह है कि उसका उसी हिसाब से अनुष्ठान होना चाहिए, मनन नहीं होना चाहिए। मरण शब्द का अर्थ या मंत्र का जप, उसके चिंतन, जितना मनन जितना जप करोगे उस मंत्र में उतने ही शक्ति का संचार होगा, उतने ही मंत्र में आपकी क्षमता बढ़ती रहेगी। इसलिए मननात्रायति इति मंत्र, केवल श्रवण से उसका आपके त्राण नहीं होगा, मनन से त्राण होगा, इसलिए उसको मंत्र कहते हैं। तो हमने पहले कहा था श्रवण से भी कुछ फायदा होगा, लेकिन श्रवण से जो फायदा होगा मनन से 100 गुना फायदा होगा, 100 गुना शक्ति ज्यादा उसका संचार होता है। तो अभिप्राय है कि ये सब उपनिषद के मंत्र हैं, वेद के मंत्र हैं। ये जो 18वां मंत्र है, ये पदार्थ शोधन का मंत्र है। ये पद और पदार्थ का शोधन, तत्पद और तत्पदार्थ शोधन, तुम पद और तुम पदार्थ का शोधन, ये मंत्र तत्पदार्थ का शोधन कर रहा है। शोधित अर्थ को यहां प्रतिपादन कर रहे हैं, कहीं शोधन करते हैं और कहीं शोधित अर्थ को प्रतिपादन करते हैं। क्या है वो शोधित अर्थ? तो इसको कल हमने संकेत किया था, यदा तमस्तन्न दिवान रात्रि, यदा जिस समय शोधित अर्थ अपरोक्ष होता है उस समय में अतम, वहां कोई तम नहीं रहता है। यहां तम नहीं रहता का अर्थ तमोगुण नहीं रहता, इतना अर्थ नहीं करना। तमोगुण नहीं रहता ये अर्थ नहीं करना, तमोगुण तो अशोधित तत्पद में भी नहीं रहता है। शोधित अर्थ में तमोगुण नहीं रहता है, ये बात कोई आश्चर्य की बात नहीं। अशोधित तत्पद में, तत्पद का अर्थ में भी, यानी तत्पद का वाच्य अर्थ जो अशोधित अर्थ है उसमें भी तमोगुण तो नहीं रहता है। इसलिए यहां अतम का अर्थ तमोगुण नहीं है। जैसे ईश्वर है, ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जो हम कहते हैं, वो तत्पद का वाच्य अर्थ है, ये शोधित अर्थ तो है ही नहीं। और शोधित अर्थ न होने पर भी ईश्वर में तमोगुण नहीं है, जो ईश्वर में ही तमोगुण नहीं है, वाच्यार्थ में ही तमोगुण नहीं है, तो लक्ष्यार्थ में तमोगुण की तो कल्पना ही छोड़ दो। तो यदा न तमः, यदा अस्तमः, जिस समय अतम रहता है, तो यहां शोधित अर्थ होने के कारण तमह शब्द का अर्थ होता है मूला विद्या, हमने कल इसके संकेत कर दिया गया है। उस समय न दिवा न रात्रि, जब मूला विद्या ही नहीं रहेगी तो तुला विद्या रहने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपाया, ये नियम है, सभी दार्शनिकों ने माना हुआ नियम है। जिस निमित्त से जो वस्तु जो भाव रहता है, वह निमित्त यदि नहीं रहता है तो नैमित्तिक भी नहीं रहता। निमित्त न हो तो नैमित्तिक नहीं है। जैसे मृत्तिका निमित्त से घड़ा बना हुआ है तो मृत्तिका निमित्त नहीं है तो घट नहीं है। भ्रांति निमित्तक सर्प की प्रतीति हुई है तो भ्रांति निमित्तक नहीं है तो फिर सर्प की प्रतीति भी नहीं है। तो ये नियम है कि निमित्तस्य अपाये नैमित्तिकस्य अपि अपाये। बिजली के निमित्त से यह एयर कंडीशन चल रहा है, शीतल हो रहा है, तो बिजली नहीं है तो शीतल नहीं होगा, निमित्त के न होने से नैमित्तिक नहीं होगा। शीतल होना ये नैमित्तिक है, यानी बिजली निमित्तक ये शीतलता है। तो जब मूला विद्या ही नहीं है तो तुला विद्या नहीं है। दिन और रात ये तुला विद्या है और कूटस्थ परमार्थ स्वरूप का आवरण ये मूला विद्या है। कलाम ने इसके पर बहुत व्याख्या की है। यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रि न सन्न चा सच्चिव एव केवल। उस समय न सत रहता है न असत रहता है। जिस समय तमह रहता है उस समय सद भी रहता है असद भी रहता है। जब तक मूला विद्या रहेगा तब तक सत और असत ये दोनों रहेंगे। और जिस समय मूला विद्या खत्म हो जाएगा उसके बाद सत भी नहीं रहेगा असत भी नहीं रहेगा। तो यहां जिस समय ये कहा गया सत नहीं रहेगा वह विशेष अर्थ में कहा गया है। सत नहीं रहेगा मतलब कारण नहीं रहेगा। सत नहीं रहेगा मतलब अव्यक्त नहीं रहेगा अव्याकृत नहीं रहेगा। यानी व्याकृत नहीं रहेगा कार्य नहीं रहेगा। क्योंकि शास्त्र जहां कहीं भी पारमार्थिक सत के अलावा अन्य वस्तुओं को यदि सत और असत पद का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब लोक व्यवहार को ध्यान में रखकर ये वाक्य का प्रयोग किया जाता है। लोक व्यवहार में सत शब्द से हम व्यक्त यानी व्याकृत पदार्थों को सत शब्द से संबोधन करते हैं कहते हैं व्याख्या करते हैं। व्याकृत माने व्यक्त हुआ हुआ पदार्थ को ही हम लोक व्यवहार में सत कहते हैं। जैसे यहां पुष्पमाला है यानी इसको संस्कृत भाषा में कहना हो तो आप क्या कहोगे पुष्पमालाम अस्ति। तो हमने सत शब्द का प्रयोग किसमें किया पुष्पमाला में किया। अस्ति पुष्पमाला यह है पुष्पमाला सत। अब अस्ति कहो या सत कहो ये पर्यायवाची शब्द है। आप है कहो सत कहो ये पर्यायवाची शब्द है। पुष्पमाला है कहो या पुष्पमाला सत कहो ये एक ही चीज है। जब श्रुति या जब शास्त्र अशोधित अर्थ पद में जब सत शब्द का प्रयोग करते हैं यानी शुद्ध ब्रह्म के अलावा अन्यत्र कहीं यदि सत शब्द का प्रयोग करते हैं तो लौकिक पदार्थों को यानी व्याकृत पदार्थों को यानी प्रगट हुए हुए व्यक्त हुए हुए पदार्थों को सत शब्द से संबोधन करते हैं। और यदि कहीं असत शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उस व्याकृत का जो पूर्व रूप है कारण रूप अव्याकृत अव्यक्त को असत शब्द से कह दिया जाता है। उदाहरण के रूप में किसी के घर में मिट्टी है और उससे कहा जाए कि तुम्हारे घर में घड़ा है कि नहीं तो यदि घड़ा न हो तो वह कहेगा मिट्टी होने पर भी घड़ा नहीं है असत पद का प्रयोग करेगा। आप ये बात तो अच्छी तरह जानते हो कि हर घर में दही में मक्खन होता है दही में घृत होता है तिल में तेल होता है। लेकिन आपके घर में एक किलो तिल है और कोई जाकर आपसे कहे कि 100 ग्राम तेल दे दो। यदि आपके पास तेल नहीं है और 1 किलो तिल है फिर भी आप क्या कहोगे तेल के लिए तेल नहीं है। तेल नहीं है का मतलब क्या हुआ जो अव्यक्त है उसको आप असत शब्द से कह रहे हो। तिल तो है तेल नहीं है आप कहोगे कि नहीं सीधे कि सीधे। लेकिन जब विचार करते हैं तो क्या तिल है तो क्या तेल नहीं है? दही है तो क्या मक्खन नहीं है, घी नहीं है? दही है तो घी है, मक्खन है। लेकिन मक्खन है करके कोई पूछता है तो आप कह दो कि मक्खन नहीं है।